विषयों के अंतर्गत मैंने आपको पहले बताया कि पहले नंबर पे विज्ञान, दूसरे नंबर पे कला संगीत और प्रायोगिक कार्य, तीसरे नंबर पे स्वास्थ्य शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा, चौथे नंबर पे गणित, पांचवें नंबर पे भाषा और छठे नंबर पे मानविकी एवं सामाजिक विषय। आपके डायग्राम में ये शो हो रहा है। अब आगे देखते हैं कि इस कोर करिकुलम की क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यह समस्या को सुलझाने पर बल देता है, इसलिए इसमें जो विषय पढ़ाए जाते हैं वो सभी विषय एक दूसरे से अलग करके नहीं पढ़ाए जाते, बल्कि सबको एक साथ ही लेकर के हम चल सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि कोई एक विषय है, जैसे मान लीजिए आपका 1 2 3 4 मैथमेटिक्स में है, इसको आप होम साइंस में भी यूज कर सकते हैं, इसको आप हिंदी में भी एक वचन द्विवचन बहुवचन इत्यादि कह करके यूज कर सकते हैं, इसको आप और दूसरे विषयों में भी यूज कर सकते हैं। फिर दूसरी बात आपकी आती है, इसकी विशेषता क्या है कि इसको पढ़ाने में किसी भी विषय का समय विभाग चक्र नहीं होता, मतलब एकदम जो लिमिटेड टाइम टेबल है कि 25 मिनट 30 मिनट का पीरियड है, 35 मिनट का, तो उसमें क्लास से निकल ही आना है, ऐसा होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक निश्चित कालांश जो दिया जाए, उस कालांश में हम इस विषय को पढ़ाने के लिए, इस पाठ्यचर्या को पढ़ाने के लिए कोरिलेट करके किसी चीज़ को बता सकते हैं। कभी कम समय कम और कभी अधिक भी लग सकता है। अगली बात यह है कि यह पाठ्यचर्या जो है वो बाल केंद्रित होती है और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित होती है, जैसा कि आप फील कर रहे होंगे इसको। अगली बात यह जो है कार्यों और समस्याओं को सुलझाने में अनुभव प्रदान करती है। जैसी जैसे समस्या आती है वैसे वैसे उसका हल निकलता जाता है। जैसा कि आपको बताया गया कि सामाजिक अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए इस पाठ्यक्रम की रचना की गई, तो हम नए नए अनुभव प्राप्त करते हैं, नई नई समस्याओं का हल से दो चार होने की कोशिश करते हैं। अगली बात यह है कि इस पाठ्यचर्या में जब दोनों एक साथ काम करते हैं, दोनों मीन्स टू पॉलर प्रोसेस, शिक्षक और शिक्षार्थी, तो दोनों मिलकर के साथ साथ काम करते हैं, दोनों के साथ काम करने के कारण आपसी संबंध घनिष्ठ हो जाते हैं और अध्ययन अध्यापन के साथ परामर्श इत्यादि भी चलता रहता है। अगली विशेषता इसकी, समन्वित पाठ्यचर्या के द्वारा बालकों की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति होते चलती है और इसके द्वारा बालकों को विविध विषयों का ज्ञान प्राप्त होता चलता है। अगली विशेषता क्या है कि इसमें जो समय विभाग चक्र बनाया गया है ना, वह बड़ा लचीला होता है, इसके कालांश बस बड़े होते हैं। अगली विशेषता इसकी कि इस पाठ्यचर्या में सर एक बात ये कही गई है कि मनोवैज्ञानिक होने के नाते यह पाठ्यचर्या सबसे ज़्यादा पॉपुलर, प्रचलित, लोकप्रिय पाठ्यचर्या के रूप में जानी जाती है। और अंतिम इसकी विशेषता, इसमें अधिकतर शैक्षिक कार्यक्रम जो है वो छात्र और शिक्षक मिल करके एक साथ करते हैं। कोई भी किसी भी कार्य को करने में, समस्या को सुलझाने में या कोई नई प्रविधि, नई प्रोजेक्ट बनाने में शिक्षक और शिक्षार्थी मिलकर के साथ साथ कार्य करते हैं। चलिए, किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं, आप जानते हैं कि अगर अच्छाई है तो बुराई भी होगी ही, तो इस पाठ्यचर्या में कुछ सीमाएं भी हैं, कुछ लिमिटेशन भी हैं, इसके दोष भी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस समन्वित पाठ्यचर्या की सीमा में क्या है। अगर दो या दो से अधिक विषयों का सम्मिश्रण शिक्षक करता है तो शिक्षक की जो शिक्षण से संबंधित आवश्यकताएं हैं उस पे अधिकतर बोझ आ जाता है। इसके अतिरिक्त अगर स्तरानुकूल इसको पढ़ाया जाए, उच्च माध्यमिक स्तर पर पाठ्य वस्तु का स्तर एवं परिमाण, अर्थात जो उसका क्राइटेरिया है पाठ्य वस्तु का उच्च माध्यमिक स्तर पर, तो वहाँ पे इस पाठ्यचर्या को अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। हम किसी भी नियम को बड़े आसानी से बना सकते हैं, लेकिन बनाए हुए नियमों को वहाँ पर टिकाए रखना बड़ा मुश्किल होता है। अगली बात कह रहे हैं यह पाठ्यचर्या जो है वो प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर तक ही अनुपयुक्त मानी जा सकती है। अगर हम उच्च स्तर पर आते हैं तो इस पाठ्यचर्या को अप्लाई करने में काफ़ी परेशानी महसूस होती है। तो आज के लिए इतना ही। आप अपने घर में रहें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।